एहेस्केल अध्याय सात। एहेस्केल अध्याय सात पद एक और दो। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, प्रभु यहोवा इसराइल की भूमि के विषय में यूं कहता है कि अंत हुआ, पहले पहाड़ों के लिए और अब मैदानों के लिए भविष्यवाणी। एहेस्केल अध्याय सात पद दो में आगे लिखा है, चारों कोने समेत देश का अंत आ गया है। ये मूल रूप से इब्रानी कविता रूप है। एहेस्केल अध्याय सात पद तीन, तेरा अंत भी आ गया और मैं अपना कोप तुझ पर भड़काकर तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा और तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे दूंगा। जैसा करनी वैसी भरनी, तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा। हम परमेश्वर को उसकी दया और उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद कहते हैं। दाऊद की प्रार्थना है, भजन संहिता 51 पद 1। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। परमेश्वर तो करुणामय है, परंतु यदि मनुष्य उसकी करुणा का त्याग करे तो स्वाभाविक है कि दंड ही पाएगा। उन्होंने परमेश्वर की करुणा को ठुकरा दिया था, अनुग्रह के आत्मा का तिरस्कार किया, इसलिए परमेश्वर ने उनके घृणित कामों का न्याय किया। एहेस्केल अध्याय सात पद चार, मेरी दया दृष्टि तुझ पर न होगी और न मैं कोमलता करूंगा, और जब तक तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे तब तक मैं तेरे चाल चलन का फल तुझे दूंगा, तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूं। इन मूर्तियों के कारण जिनकी तुम आराधना करते हो, तब तुम जानोगे कि मैं यहोवा हूं। एहेस्केल अध्याय सात पद पांच से लेकर नौ तक। प्रभु यहोवा यूं कहता है, विपत्ति है, एक बड़ी विपत्ति है, देखो वो आती है, अंत आ गया है, सबका अंत आया है, वो तेरे विरुद्ध जागा है, देखो वो आता है। हे देश के निवासी, तेरे लिए चक्र घूम चुका, समय आ गया, दिन निकट है, पहाड़ों पर आनंद के शब्द का दिन नहीं, हुल्लड़ ही का होगा। अब थोड़े दिनों में मैं अपनी जल जलाहट तुझ पर भड़काऊंगा और तुझ पर पूरा कोप उंडेलूंगा और तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा और तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे भुगताऊंगा। मेरी दया दृष्टि तुझ पर ना होगी और ना मैं तुझ पर कोमलता करूंगा। मैं तेरे चाल चलन का फल तुझे भुगताऊंगा और तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा दंड देने वाला हूं। मैंने आपको बताया है कि ये इब्रानी भाषा की कविता है, उसमें एक ही बात बार बार कही जाती है। इसकी तुकबंदी इब्रानी में ही समझ में आती है, इब्रानी कविता में लय नहीं होती है। एहेस्केल अध्याय सात पद दस से लेकर तेरह तक। देखो उस दिन को देखो, वो आता है, चक्र घूम चुका, छड़ी फूल चुकी, अभिमान फूला है, उपद्रव बढ़ते बढ़ते दुष्टता का दंड बन गया, उनमें से कोई ना बचेगा और ना उनकी भीड़ भाड़, ना उनके धन में से कुछ रहेगा और ना उनमें से किसी के लिए विलाप सुन पड़ेगा। समय आ गया, दिन निकट आ गया है, ना तो मोल लेने वाला आनंद करे और ना बेचने वाला शोक करे, क्योंकि उनकी सारी भीड़ पर कोप भड़क उठा है। चाहे वो जीवित रहे तो भी बेचने वाला बेची हुई वस्तु के पास कभी लौटने ना पाएगा। उनकी रीति ये थी कि आर्थिक संकट में ही वे संपत्ति बेचते थे, अन्यथा वे अपने बाप दादों की संपदा को पवित्र मानकर अपने बच्चों को उत्तराधिकार में देते थे। इसकी सुरक्षा और देखरेख में उनका पूरा जीवन लग जाता था। यदि किसी कारणवश उन्हें वो संपदा बेचनी भी पड़ी तो उनके कानून में प्रावधान था कि वाचा के शर्तों को पूरा करते हुए वे एक निश्चित समय के बाद उसे पुनः प्राप्त कर सकते थे। यदि आप उस निर्धारित समय में अपनी संपदा को अपनाने में सक्षम न हुए तो आपके कुटुंब में से कोई भी पुरुष उसे मुक्त करा सकता था। संपत्ति का विक्रय सदा ही शोक करने का कारण होता था, क्योंकि वो एक पवित्र गरोहर होती थी, उसे पवित्र माना जाता था। खरीदार के लिए वो समय आनंद मनाने का होता था। एस्केल कह रहा है, खरीदार आनंद ना मनाए, क्योंकि उसे परदेश में भूमि खरीदने का अवसर ही नहीं मिलेगा। और बेचने वाले से वो कहता है कि उसे शौक करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि बंधुआई में वो कहां से अपनी भूमि बेचेगा। और यदि बेचने के बाद बंधुआई में गया तो उसे छुड़ाने के समय वो वहां नहीं होगा, क्योंकि वो पूरी पीढ़ी बाबुल में ही मर जाएगी। एहेस्केल अध्याय 7 पद 13। चाहे वे जीवित रहे, तुम बंदी बनाकर बाबुल ले जाए जाओगे। एहेस्केल अध्याय 7 पद 13 और 14। क्योंकि दर्शन की ये बात देश की सारी भीड़ पर घटेगी। कोई भी मनुष्य जो अधर्म में जीवित रहता है बल ना पकड़ सकेगा। उन्होंने नरसिंह फूंका और सब कुछ तैयार कर दिया, परंतु युद्ध में कोई नहीं जाता, क्योंकि देश की सारी भीड़ पर मेरा कोप भड़का हुआ है। नरसिंगा फूके जाने का अर्थ इसराइलियों के लिए लड़ाई की घोषणा नहीं, अपितु परमेश्वर के युद्ध में प्रवेश की घोषणा थी। परंतु परमेश्वर कहता है, मैं युद्ध में उनका साथ नहीं दूंगा, वे बैरी के हाथ में कर दिए जाएंगे, अतः नरसिंगा फूकना व्यर्थ होगा। एहेस्केल अध्याय 7 पद 15 और 16। बाहर तलवार और भीतर महंगी और मरी है। जो मैदान में हो वो तलवार से मरेगा, और जो नगर में हो वो भूख और मरी से मारा जाएगा, और उनमें जो बच निकलेंगे वे बेचेंगे तो सही, परंतु अपने अपने अधर्म में फंसे रहकर तराइयों में रहने वाले कबूतरों की नाई पहाड़ों के ऊपर विलाप करते रहेंगे। वे जो तलवार और महामारी से बचकर पहाड़ों में भाग गए थे, यरूशलेम के विनाश को देखकर विलाप करते, शोक मनाते और रोते हैं। एहेस्केल अध्याय 7 पद 17 और 18। सबके हाथ ढीले और सबके घुटने अति निर्बल हो जाएंगे, और वे कमर में टाट कसेंगे, और उनके रोए खड़े होंगे, सबके मुंह सूख जाएंगे और सबके सिर मुंडे जाएंगे। ये शोक प्रकट करने के चिन्ह है। एहेस्केल अध्याय 7 पद 19 से लेकर 21 तक। वे अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। यहोवा की जलन के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा ना सकेगी, ना उससे उनका जी संतुष्ट होगा, ना उनके पेट भरेंगे, क्योंकि वह उनके अधर्म के ठोकर का कारण हुआ है। उनका देश जो शोभ्यमान और शिरोमणि था, उसके विषय में उन्होंने गर्व ही गर्व करके उसमें अपनी घृणित वस्तुओं की मूर्तें और घृणित वस्तुएं बना रखी। इस कारण मैंने उसे उनके लिए अशुद्ध वस्तु ठहराया है, और मैं उसे लूटने के लिए परदेशियों के हाथ और धन छीनने के लिए पृथ्वी के दुष्ट लोगों के वश में कर दूंगा, और वे उसे अपवित्र कर डालेंगे। वो पवित्र स्थान, महिमा के स्थान और मंदिर के सजावट के विनाश एवं अशुद्ध किए जाने के विषय कह रहा है। एहेस्केल अध्याय 7:22, मैं उनसे मुंह फेर लूंगा तब वे मेरी रक्षित स्थान को अपवित्र करेंगे। वास्तव में मंदिर का पवित्र स्थान, जिसे महापवित्र स्थान कहा जाता है, अपवित्र हो जाएगा। एहेस्केल अध्याय 7:22 से लेकर 27 तक, डाकू उसमें घुसकर उसे अपवित्र करेंगे, एक संकाल बना दें, क्योंकि देश अन्याय की हत्या से और नगर उपद्रव से भरा हुआ है। मैं अन्य जातियों के बुरे से बुरे लोगों को लाऊंगा, जो उनके घरों के स्वामी हो जाएंगे, और मैं सामर्थियों का गर्व तोड़ दूंगा और उनके पवित्र स्थान अपवित्र किए जाएंगे। सत्यनाश होने पर है, तब ढूंढने पर भी उन्हें शांति न मिलेगी। विपत्ति पर विपत्ति आएगी और उड़ती हुई चर्चा पर चर्चा सुनाई पड़ेगी, और लोग भविष्यत वक्ता से दर्शन की बात पूछेंगे, परंतु याजक के पास से व्यवस्था और पुरनियों के पास से सम्मति देने की शक्ति जाती रहेगी। राजा तो शोक करेगा और रईस उदासी रूपी वस्त्र पहनेंगे, और देश के लोगों के हाथ ढीले पड़ेंगे। मैं उनके चलन के अनुसार उनसे बर्ताव करूंगा और उनकी कमाई के समान उनको दंड दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर के मंदिर को अशुद्ध करने और ध्वस्त करने का परिणाम होगा कि लोग तलवार से, महामारी से और अकाल से नाश किए जाएंगे।